एक विचार आपके सामने रखा जा रहा है जिसका विषय है ईश्वर परायण जीवन। ईश्वर परायण जीवन शायद हम में से काफी लोग ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन शरीर परायण जीवन इसको तो सभी अच्छी तरह से जानते हैं। जो भी मनुष्य संसार में आता है और सांसारिक जीवन व्यतीत करता है वो अपने आप को शरीर ही समझता है। उसका एक विशेष नाम है, रूप है, आकार है, और इस शरीर को अपना स्वरूप समझते हुए वो सांसारिक जीवन व्यतीत करता है। आज के वक्त में यदि संसार पे निगाह डाली जाए तो अभी भी विश्व की लगभग आधी आबादी 50% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। ऐसे लोग सारी जिंदगी केवल दो वक्त की रोटी जुटाने में, रहने के लिए एक झोपड़ी जुटाने में या दो वस्त्र शरीर के लिए जुटाने में अपनी आयु खत्म कर देते। तो शरीर की जो मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए ही उनका जीवन होता है और उसी संघर्ष में वो समाप्त हो जाते हैं। तो उनका तो पूरी तरह से शारीरिक जीवन ही होता है, इसके ऊपर ना उनकी कोई समझ होती है ना उनको उस बात की फुर्सत होती है। लेकिन इसके आगे के जो लोग हैं जिनके पास खाने को भी है, पहनने को भी है, रहने को भी है, रहने को जगह भी है, वो लोग मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष नहीं करते बल्कि उनका संघर्ष होता है अपनी जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, जो जीवन में बना लेते हैं उनके लिए वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चाहे वो अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो, चाहे वो अच्छे से अच्छा व्यवसाय हो या नौकरी हो, उनकी जो अंदर से इच्छा है कि मैं अच्छी से अच्छी पढ़ाई करूं वो इस वास्ते है कि भविष्य में चलकर मैं बड़ा डॉक्टर बन सकूं, बड़ा इंजीनियर बन जाऊं या बड़ा व्यवसायी बन जाऊं, ताकि अंदर जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके। तो संसार में लगभग आधे लोग तो वो निकल गए जो अपनी बेसिक जो नीड्स हैं उसकी पूरी करने के लिए जीवन व्यतीत कर देते हैं। बाकी अधिकतर लोग ऐसे निकल जाते हैं जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारे जीवन की प्लानिंग करते हैं, और यदि बीच में उनके जीवन में बाधाएं भी आ जाती हैं, किसी के बीच में मौत हो जाती है घर परिवार में, कोई रोगी हो जाता है, किसी की सर्विस छूट जाती है, किसी का बिजनेस बिगड़ जाता है, तो जो उनकी जीवन में कमी रह जाती है उस कमी को दूर करने का उपाय वो संसार में ही तलाश करते हैं, और तलाश करते करते दुखी होकर ही संसार से विदा हो जाते हैं। उनको भी जिंदगी की कोई समझ नहीं आती कि मनुष्य जीवन व्यतीत तो क्या था मैंने सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन चिंता, फिक्र, काम का बोझ, भविष्य का बोझ, इस सब के अंदर दबकर उसका जीवन लीला समाप्त हो। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, जैसे कि परिवार बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, अचानक क्या देखते हैं कि परिवार में जो सबसे प्रिय व्यक्ति था वो बिछड़ गया, और उनका उसमें कोई कर्म दोष नहीं है, उसके कारण एक बड़ा दुख परिवार पर आ गया। कभी ऐसा होता है सारा खुशहाली पूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा है, कोई रोग ऐसा परिवार में किसी व्यक्ति पर आ गया कि बड़ा पैसा भी खर्च हो गया और उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई। कभी कभी ऐसी सामाजिक परिस्थितियां बदल जाती हैं कि व्यक्ति का बिजनेस ही चौपट हो जाता है, कभी प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आ जाती हैं, कभी भूचाल आ जाते हैं, कभी बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, व्यक्ति उनके अंदर तहस नहस हो जाता है। तो ये जो तीसरी श्रेणी के लोग हैं जिनके अंदर विचार चलता है, वो सोचते हैं मैंने गलती तो कोई की नहीं, फिर इतनी बड़ी विपत्ति मेरे ऊपर कैसे आ, उनके अंदर विचार आता है कि सब कुछ मेरे हाथ में ही नहीं है, बहुत कुछ प्रकृति के हाथ में है। उनके अंदर एक ईश्वर विश्वास की करंट दौड़ती है कि जो संसार चक्र है केवल इसको मनुष्य चलाने वाला नहीं है, इसके पीछे जो प्रकृति का मालिक ईश्वर है उसका भी हाथ। वो कभी सुनता है जब सत्संग में जाता है या शास्त्र का स्वाध्याय करने का कभी अवसर मिलता है या किसी ईश्वर विश्वासी व्यक्ति के पास बैठने का मौका मिलता है, तब उसको पता लगता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो उसके प्रारब्ध के अनुसार चलता है। क्योंकि एक ही परिवार में आप देखते हैं कि एक बालक पैदा होता है उसकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र बड़ी तेज होती है, एक बालक पैदा होता है उसकी बुद्धि बड़ी मंद होती है, एक व्यक्ति पैदा होता है बड़े अमीर घर में पैदा हो जाता है, एक व्यक्ति पैदा होता है बड़े गरीब घर में पैदा हो जाता है, अभी तो कर्म उसने कोई किया ही नहीं। तो ये जो विचारशील प्राणी है ये सोचता है हर घटनाक्रम के बारे में सोचता है कि ऐसा क्यों होता है। तब ऐसा व्यक्ति जब किसी सही सत्संग का श्रवण करने का उसको जब मौका मिलता है तो वहां जाकर वो धर्मशास्त्रों की व्याख्या सुनता है, ईश्वर विज्ञान को समझने का उसको मौका मिलता है। वो खुद जब कोई धर्मग्रंथ का अध्ययन करता है, मान लिया रामायण ले लीजिए, तो वो केवल राम की कहानी नहीं पढ़ता, वहां पर कैसे युद्ध हुआ क्या क्या राम ने किया, वो सारी रामायण को जितना भी घटनाक्रम है उस घटनाक्रम के द्वारा क्या समझाया जा रहा है इस जीवन के विज्ञान के बारे में, ईश्वर के बारे में, उसमें से उस विज्ञान को तलाशने की वो कोशिश करता है। देखिए रामायण के प्रसंग आता है, जिस समय भगवान राम को वनवास हो गया 14 वर्ष का, और वो भी हुआ उनकी अपने ही जो सौतेली माँ थी कैकेयी उनकी वजह से उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ। कैकेयी ने उनके पिता दशरथ से वो वरदान मांगा था कि भाई मुझको जो है वो 2 वरदान चाहिए, जैसे जो आपने वादा किया था कि एक तो राम के 14 वर्ष का वनवास, दूसरा भरतपुर राजगद्दी। तो राम को वनवास हो गया, हम जानते हैं कि दशरथ को कितना प्रेम था राम से। जब वो वन को चले गए तो उनके वियोग में ही दशरथ की मृत्यु हो गई। जब दशरथ की मृत्यु हो गई तब क्योंकि सीता भी राम के साथ चली गई थी, तो सीता के पिता राजा जनक और उनकी माता सुनैना ये दोनों परिवार सहित माता कौशल्या के पास आते हैं शोक व्यक्त करने के लिए। तो जानकी जी की जो माता सुनैना है वो कहती है उनसे कौशल्या से कि भगवान की भी कैसी टेढ़ी दृष्टि है कि इतना अच्छा परिवार है और उसमें कैसा कष्ट उन्होंने भेज दिया। तो देखिए माता कौशल्या विचारवान स्त्री थी, उनके अंदर विचार था, सत विचार था। तो रामायण में आता है माता कौशल्या कहती हैं सुनैना से, कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कि जो कर्म की गति है वो बड़ी ही कठिन है, इसको केवल विधाता अर्थात ईश्वर ही जानता है कि किसको किस वक्त कौन से कर्म का फल मिला है। जो शुभ अशुभ सकल फल दाता, जो भी आपके जीवन में दुख रूप में या सुख रूप में फल आ रहा है वो वही ईश्वर प्रदान करता है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं कि मनुष्य के वर्तमान जीवन में उसके जीवन में जो कुछ भी कष्ट आ रहा है, सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, ये केवल उसके वर्तमान कर्मों का फल नहीं है, ये उसके पिछले कई जन्मों का फल साथ में जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो देखिए ना कि बालक अभी पैदा ही हुआ है, एक बालक सुखी घर में पैदा हो गया, एक बालक जो है वो गरीब घर में पैदा हो गया, अभी तो कर्म किया ही नहीं उसने। तो जीवन का जो घटनाक्रम है ये सिद्ध कर रहा है कि मनुष्य का जो वर्तमान कर्म है, वर्तमान जीवन कर्म, केवल उसके अनुसार उसके जीवन में सुख दुख नहीं आते, उसे कई जन्मों का फल उसके साथ चला जाता है। लेकिन ये होता कैसे, इसके बारे में गीता में एक श्लोक आता है 18वें अध्याय में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायाया। हे अर्जुन, सारे भूत प्राणियों के, सारे जीवों के हृदय में ईश्वर विराजमान है, सारे जीवों के हृदय में ईश्वर विराजमान है, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायाया। और इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित जीवों को उनके कर्मानुसार अपनी माया द्वारा संसार में भरमाता रहता है। तो वो प्रभु इस शरीर के अंदर ही विराजमान है। लेकिन दूसरी बड़ी खास बात है, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायाया, इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित जीवों को उनके कर्मानुसार वो भरमाता रहता है अपनी माया। तो ये शरीर यंत्र मात्र है और जीव इसके अंदर निवास कर रहा है, और ईश्वर खुद भी शरीर के अंदर निवास कर रहे हैं। इसीलिए जब वो विचारशील प्राणी इस बात पर गौर करता है कि ये गीता कह क्या रही है कि शरीर तो मात्र एक यंत्र है, इस यंत्र के द्वारा मैं भी कार्य कर रहा हूं और इस यंत्र के द्वारा प्रभु भी मुझको संसार में सुख दुख दे रहे हैं, मेरे कर्म चक्र के अनुसार इस शरीर को संसार में घुमा रहे हैं, मैंने कहां पैदा होना है मैं डिसाइड नहीं करता, ये प्रभु ही डिसाइड करते, मैंने कब मरना है मैं डिसाइड नहीं करता, इसका निर्णय प्रभु करते हैं, मैंने कब पैदा होना है इसका भी निर्णय मैं नहीं करता, ये प्रभु करते, कौन से मुझको माता पिता मिलेंगे इसका भी निर्णय मैं नहीं कर सकता, ये भी प्रभु ही करते। तो वो मेरे प्रार्थ अनुसार इस शरीर के अंदर बैठे बैठे इस शरीर को संसार में घुमाते और मुझको उसके द्वारा सुख दुख की प्राप्ति। परंतु गलती से क्या होता है कि मैं अपने आप को शरीर समझ लेता हूं, इसीलिए मैं उस ईश्वर का लाभ नहीं उठा पाता। अब मुझको केवल अपने कर्म पर भरोसा रहता है, अर्थात मैं शरीर प्राण जीवन व्यतीत करता हूं, ईश्वर प्राण जीवन के बारे में मुझको पता ही नहीं, जबकि सब कुछ प्रभु के हाथ में। तो इसीलिए फिर मनुष्य क्या करे, तो इसके अगले ही श्लोक में देखो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्तसि शाश्वत। हे अर्जुन, इसलिए तू सब प्रकार से उस ईश्वर की ही शरणागत हो, यदि तू ऐसा करता है तो क्या होगा, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्तसि शाश्वत, उसके कृपा रूप में तुझको परम शांति प्राप्त होगी और वो सनातन परम धाम जो शांति का स्थान है वो तुझको प्राप्त। तो सब प्रकार से उस ईश्वर की शरणागत होने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहे, क्योंकि जब मेरी जीवन लीला ईश्वर के हाथों में है और शरणागत हुआ हूं मैं संसार के आगे, तो फिर मुझको बेचैनी तो मिलेगी। तो इसीलिए यदि शांति चाहिए तो प्रभु की शरणागति लेनी ही पड़ेगी। तो ये जो विचारशील प्राणी है तीसरे दर्जे वाला, ये सोचता है, ये सारा सारा विज्ञान सुनने के बाद या कुछ शास्त्र पढ़ने के बाद जब ये सोचता है कि जब ये प्रारंभ का चक्र ईश्वर के हाथ में है, मैं तो पिछले जन्म में क्या कर्म किए भूल चुका, एक व्यक्ति ने एक बम फोड़कर 500 लोगों की हत्या कर दी, मान लिया उसके बाद वो मर भी गया, खुद भी मर गया, तो क्या 500 लोगों की जो हत्या की है क्या एक बार मरने से उसका एवज पूरा हो जाएगा, अगला जन्म कैसा मिलेगा, कितने जन्म भोगेगा, ये तो ईश्वर ही जान गया। तो पिछले जन्मों में क्या करके आए हैं हम, उसका हिसाब किताब केवल ईश्वर के पास। तो इसीलिए ये व्यक्ति सोचता है जब प्रारब्ध के अनुसार मेरा जीवन लीला चलनी है और जीवन में मौत भी आनी है, रोग भी आने हैं, काम बनने भी हैं, काम बिगड़ने भी हैं, सुख भी आने हैं, दुख भी आने हैं, मेरी कुछ इच्छाएं पूरी होंगी, कुछ नहीं भी होंगी, इसका मतलब मैं सारी जिंदगी बेचैन ही रहूंगा क्या? इस बेचैनी से मुक्त होने का क्या कोई रास्ता नहीं है? उस व्यक्ति को यह बात बताई जाती है कि रास्ता है, उसी के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन बड़ा ही बेचैन है। वो कहता था ना मुझको राज्य चाहिए, क्योंकि इतने लोगों को मारकर मुझको राजपाट मिल भी गया तो मैं उसका क्या करूंगा, और यदि मैं युद्ध करता हूं तो इतने सारे लोग मारे जाएंगे, तो इतनी सारी स्त्रियां तो विधवा हो जाएंगी, इस देश का क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा? वो अंदर से बड़ा परेशान। उसकी परेशानी दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने यह उपदेश दिया है। और वो अर्जुन ही परेशान नहीं है, हम सब भी इस संसार में आकर परेशान, वो स्थिति हम सबके सामने है। इसलिए कृष्ण का संदेश यूनिवर्सल है, वो सारे जगत के लिए होता है। इसलिए अवतार जब आता है वो दो चार लोगों के लिए नहीं आता, वो सारे विश्व के लिए आता है। एक संत जब धरती पर आता है वो सारे विश्व के लिए आता है, उसकी वाणी उसके विचार सारे विश्व के लिए होते हैं, इसीलिए उसको जगत गुरु कहा जाता है। तो वो भगवान कृष्ण संदेश क्या दे रहे हैं कि इस बेचैनी से बचने का एकमात्र रास्ता है कि तू ईश्वर परायण होकर, ईश्वर की शरणागत होकर तू जीवन बती। तो मनुष्य जब दुखी होता है तो फिर वो ईश्वर की शरणागत हासिल करता है, लेकिन ये काम केवल वो करता है जो विचारशील है, जो इच्छाओं के लिए जी रहा है, वो ऐसा नहीं करता। उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है यदि तूने ईश्वर प्राण जीवन व्यतीत करना है तो सबसे पहला काम तू क्या कर कि तू संसार के घटनाक्रम को ईश्वर आज्ञा में चलता हुआ जान। मान लिया तू अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक ही कर रहा है, मान लो कुछ लोग तो जान के गलती करते ना, एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी बुद्धि से वो ठीक ही निर्णय कर रहा है, ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उस व्यक्ति के जीवन में भी तो दुख आते हैं, उसके काम भी तो बिगड़ जाते हैं, उसके घर में भी तो मौत हो जाती है, उसके घर में भी तो रोग आ जाते हैं। तो उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि सबसे पहले तू क्या कर कि तू संसार चक्र को, तेरे साथ जो कुछ भी होता है उसको ईश्वर आज्ञा में देखना सीख। सबसे पहली बात इसी के बारे में देखो महर्षि रमण क्या कहते हैं। महर्षि रमण कहते हैं यदि मन, बड़े काम की बात है ध्यान से सुनिए, यदि मन किए गए या ना किए गए कार्य से परेशान हो तो ईश्वर के हाथों में यंत्र मात्र मानकर कार्य किया जाए तथा दुख सहन किया जाए, यही बुद्धिमानी होगी। वह भार वहन करता है अर्थात वो भार अपने ऊपर ले लेता है तथा शांति प्रदान करता है। इसका फायदा जी को क्या होता है? जो व्यक्ति संसार में परेशान है उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि सब कुछ ठीक करके भी मेरा काम बिगड़ गया, ठीक प्रकार का मैंने आहार ग्रहण किया, ठीक प्रकार से मैं सोया, फिर भी उसको कैंसर क्यों हो गया उसको पता ही नहीं चलता। ये संसार में सभी जीवों के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है। तो इसलिए ऋषि क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो किए गए कार्य या ना किए गए कार्य, कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो आप कर नहीं पा रहे हो या हो नहीं पा रहे हो, तो उन के बारे में आप अपने आप को ईश्वर के हाथों में यंत्र मात्र मानो कि तेरा जो प्रारब्ध चक्र है वो इस प्रकार का है कि तेरा जो काम है वो बिगड़ेगा ही या काम हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए जब तू ईश्वर प्रायण होकर ईश्वर को करता जानेगा तब क्या होगा, तेरे अंदर संतोष आएगा, उस दुख को बर्दाश्त करने की तेरे अंदर क्षमता आ जाएगी, तेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, तुझे हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, तेरे अंदर उस दुख को सहन करने की क्षमता आ जाएगी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो प्रभु जो है वो भार खुद उसका ले लेते और उस जीव को, उस ईश्वर प्राण जीव को शांति प्रदान, ये उनका काम। आगे वो कहते हैं कि जब ये जीव इस प्रकार ईश्वर को करता जानकर सुख दुख उसकी आज्ञा में सहन करता है तब उसके अंदर एक परिवर्तन आता है ऐसे व्यक्ति के अंदर। वो परिवर्तन क्या आता है? वो किसी ना किसी रूप में निष्काम होकर ईश्वर की पूजा करनी शुरू कर देता है। वो चाहे शंकर जी की पूजा करे, चाहे वो पार्वती जी की पूजा करे, किसी की पूजा करे, लेकिन उसकी पूजा में एक परिवर्तन होगा कि वो निष्काम रूप में पूजा करेगा। निष्काम रूप में क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सुख और दुख जब प्रभु के हाथों में है तो ये तो हमेशा मेरे जीवन में आते जाते रहेंगे। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अपने अनुसार या अपनी इच्छाओं के अनुसार मैं नहीं जी सकता। ये संसार चक्र, मेरा गृहस्थ, मेरा समाज मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, वो अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चलेगा। इसीलिए वो क्या कहता है कि प्रभु इस प्रकार तो मैं यदि इच्छाओं को लेके जिया तो सारी जिंदगी बेचैन होऊंगा। तो वो शांति की तलाश करता है, वो प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझको ऐसी बुद्धि दो कि मुझको शांति का मार्ग नजर आने लगे, ऐसी मुझको शक्ति दो कि सुख में भी और दुख में भी दोनों हालतों में मेरी जो मानसिक बेचैनी है उससे मुझको मुक्ति मिले, मेरे मन का जो संतुलन है वो बना रहे, मेरे अंदर धैर्य संतोष ये ना छिने ये बना रहे। वो ईश्वर की जब पूजा करता है तो उस प्रभु से वो शांति मांगता है, सुख दुख में धीरज मांगता है। वो ईश्वर के आगे फिर गिड़गड़ाता नहीं, प्रभु मेरे घर में बेटा नहीं है, बेटा दे दो, मेरे घर में दौलत नहीं है, प्रभु दौलत दे दो। वो प्रभु के आगे इन चीजों की भीख नहीं मांगता, क्योंकि उसकी बुद्धि में पहले ही विचार आ चुका है कि ये प्रारब्ध के अनुसार ये चीजें मिला करती, जिसको बेटा मिलना है वो मिलेगा, आप चाहे पूजा करो चाहे ना करो इससे कोई फर्क नहीं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्रात। रामायण बड़ा स्पष्ट करे। तो इन महापुरुषों की बात हमारी इच्छा अनुसार बदल तो नहीं सकती, शास्त्रों का जो ज्ञान है, जो वचन है उनके, वो अटल है। किसी भी काल में शास्त्र की रचना हुई हो हर जगह यही बात आपको मिलेगी। तो इसीलिए ये जो विचारवान प्राणी है जिसके अंदर से इच्छा है कि मैं ईश्वर का होकर जीऊं, वो ईश्वर से प्रार्थना करता है शांति। तो इसके लिए देखो महर्षि रमण क्या लिख रहे हैं, ये भी बड़े काम की बातें, ध्यान से सुन। कहते हैं जब तक अपने को जीव मानते हो, हम लोग जब अपने को जीव मानते हैं या मनुष्य मानते हैं, जब तक अपने को जीव मानते हो ईश्वर में आस्था रखकर उसकी पूजा करते, फिर ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होता है, फिर गुरु परायण जीवन से वो आत्मा के रूप में प्रकट होता है। देखिए ये जो निष्काम पूजा कर रहा है ईश्वर की, किसी भी रूप में कर रहा है, चाहे वो गणेश जी की पूजा कर रहा है, चाहे शंकर जी की पूजा कर रहा है, चाहे वो किसी देवी की उपासना कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन उसकी पूजा में यदि निष्कामता है तो बात हो रही है। तो महर्षि रमण कह रहे हैं तो ऐसे जीव के लिए वो जो प्रभु हैं, जिस रूप में भी उसने पूजा है, वो गुरु रूप में प्रकट हो गए। अर्थात ऐसे व्यक्ति का विश्वास पूर्ण गुरु पर आ जाता है। जब पूर्ण गुरु पर विश्वास आता है तो उस गुरु के वचनों को, उस गुरु की वाणी को वो गहराई से समझने की कोशिश करता है। उसको पता है ना कि गुरु पर विश्वास आने का मतलब होता है कि जो प्रभु जिसकी उपासना मैंने 10-20 साल की, अब वही प्रभु गुरु बनकर प्रकट हुए। तो मैंने यदि ईश्वर तक पहुंचना है, जो अंतर्यामी परमेश्वर है, जो मेरे अंदर विराजमान है, जिसको गीता कह रही है ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेषे अर्जुन तिष्ठति, कि वो सबके हृदय में विराजमान है, तो उस प्रभु से मिलन हो कैसे? तो उसका रास्ता गुरु ही बताता है। तो इसीलिए जो ये जीव मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाके चारों तरफ घूमता फिर रहा था, अब ये गुरु की शरणागत होता है, उस गुरु पूर्ण गुरु पर विश्वास करके उसके वचनों को पढ़ता है, उसकी वाणी का श्रवण करता है, उसका सत्संग श्रवण करता है, और फिर वो देखता है कि गुरु क्या करने को कह रहा है। जैसे मान लिया मेरा महाराज जी पर विश्वास है, महात्मा गांधी पर विश्वास है, तो मैं देखता हूं कि वो मुझसे करने को क्या कह रहे हैं, मैं उनकी पूजा करना शुरू नहीं करता। दुनिया का कोई भी गुरु आज तक ऐसा नहीं हुआ है, जो पूर्ण गुरु है वास्तव में, तो जिसने शिष्य से यह कहा कि तू मेरी पूजा कर, क्योंकि गुरु आपको जो अंतर्यामी ईश्वर है ना उससे मिलाने के लिए आया है। वो अपनी पूजा कराएगा तो आप बाहरी पूजा करते रहोगे सारी जिंदगी। वो आपको यह बताने आया है कि मैं तेरे अंदर हूं, अभी गुरु रूप में तेरे सामने बाहर प्रकट हो। इसीलिए महाजी भी कहते थे, जब गुरु के स्वरूप को समझा, बोलते थे कि सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ होगा। बड़ा स्पष्ट संदेश है गुरु का कि सतगुरु अंतर जम रहा है। कौन है वो? परमेश्वर ही सतगुरु है, जो बाहर प्रकट होकर शरीर रूप में उसकी वाणी प्रकट हो रही है, उसके द्वारा शास्त्रों की रचना हो रही है। वो क्यों हो रही है? ताकि सारे जगत के लोग उस वाणी को पढ़ सकें, उस शास्त्र को पढ़ सकें, उसको समझकर प्रभु से जो अंतर्यामी है उससे मिलाप कर। तो गुरुदेव ने जब ये पांच नियम बताए, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण, तो जिस व्यक्ति का विश्वास उन पर आता है तो वो कोशिश करता है इन पांच नियमों पर चलने की। यह है गुरु की पूजा, इसी को गुरु प्राण जीवन बोलते हैं। क्यों इस प्रोग्राम पे चलता है, गुरु ने क्यों बताया यह प्रोग्राम, वो इस पर विचार कर रहा है, इसकी डिटेल्स जानने की कोशिश करता है कि संसार में तो जिसके पास भी बैठो वो हमको यही कहता है, अरे भाई ये कोट तुमने बड़ा अच्छा पहन रखा है, ये कहां से खरीदा, कितने का खरीदा, कहां बनवाया। मित्र है तो कहेगा भैया तू भी खरीद लिया। सहेली है, उन्हें बड़ी अच्छी साड़ी पहन रखी है, तो दूसरी सहेली कहेगी तू भी खरीद ले भाई। तो जिसके पास ही बैठो वो हमारी वासनाओं को बढ़ाने की बात करता है। घर की चीजें और विस्तार करने की बात करता है, मकान छोटा है तो बड़ा बनाने की बात करता है, पैसा कम इनकम है तो ज्यादा इनकम की बात करता है, यदि एजुकेशन थोड़ी कम है तो और हायर एजुकेशन की बात करता है, पद छोटा है तो बड़े पद की बात करता है। ये दुनिया तो आपको फैला रही है, वासना के जाल में ले जा रही है, लेकिन केवल गुरु है जो आपको सिकोड़ने की बात करता है, वो सादगी की बात करता है। वो कहता है जितने में भी तुम्हारे पदार्थ हैं, यदि तुम्हारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो रही है, ऐसा नहीं है भूखा रहना, आपने आराम से आपको खाने को है, आराम से पहनने को भी है, आराम से रहने को भी, यदि मूलभूत आवश्यकता आपकी पूरी हो रही है, वो कहते हैं कि बचाओ फिर, आगे पैर फैलाओ मत, सिकोड़ने की कोशिश करो, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको कम करने की कोशिश करो। तो सादगी की बात करता है, कामना को कम करने का रास्ता। हम स्वार्थ में जीते हैं, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ चाहते हैं, वो सेवा की बात करता है, कहता है दूसरे के लिए करना सीख। हम चलाकियां करते हैं, दिल में कुछ और है, मुझसे कुछ और बात करते हैं, वो सत्य का उपदेश देता है। वो कहता है कि सरल स्वभाव बनाओ, जो दिल में है वो मुझसे निकालो, एक ईश्वर का भरोसा रखो कि देने वाला वो है, छीनने वाला भी वही। वो सत्य विश्वास सिखाता है। फिर सत्संग की बात करता है कि संसार की जो बातें सुनते हैं इससे माया में फंस जाते हैं, सत्पुरुषों ने जो बातें की हैं या जो लिखी है उन्होंने, उसको पढ़ने की, उनकी सुनने की कोशिश करो, उनको समझने की कोशिश करो, बुद्धि का इस्तेमाल इस वास्ते करो। फिर वो कहता है हम 24 घंटे संसार की याद करते हैं, इसके मुकाबले वो कहता है कि ईश्वर की याद करना शुरू करो, वो तुम्हारे अंदर विराजमान, वो शांति का सागर है। जिस व्यक्ति ने भी संसार में आकर उस प्रभु की भक्ति की है, उसके जीवन में शांति ही शांति देखने को मिलेगी। इसीलिए आज तक हम लोग ना राम को भुला पाए, ना कृष्ण को भुला पाए, ना ईसा को भुला पाए, ना मोहम्मद को भुला पाए। क्यों हम याद करते हैं? उनके ड्रेस से तो हम याद नहीं करते, उनके पैसे से भी याद नहीं करते, उनकी भक्ति के कारण हमको याद करते हैं। उनका जीवन ईश्वर परायण, उस ईश्वर परायणता के कारण हम उनको याद करते। तो इसीलिए वो प्रभु जिनकी हमने पूजा निष्काम रूप में की, उन लोगों के बाद बिल्कुल छोड़ दें आप जो सकाम पूजा करते हैं। करोड़ों लोग मिलेंगे आपको, देवी भक्त, शिव भक्त, कृष्ण भक्त, राम भक्त, लेकिन उनकी संख्या अधिक मालूम है। क्यों है? इसीलिए है क्योंकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो पूजा करते हैं। जो जिंदगी में कुछ कमी रह गई है उसकी पूर्ति के लिए वो पूजा करते हैं, इसीलिए उनसे प्रभु प्रसन्न नहीं होते। प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं जो उनकी पूजा उन्हीं के लिए करता है, उनको जानने के लिए करता है, उनके दर्शन के लिए करता है, जो शांति के लिए उपासना करता है। तो वो प्रभु फिर ऐसे जीव का, ऐसे मनुष्य का किसी ना किसी पूर्ण गुरु पर विश्वास वो ला देते हैं। ये काम प्रभु का ही है, आपका नहीं है। पूर्ण गुरु पर विश्वास का आना ये बड़े भाग्य की बात है, ये साधारण भाग की बात नहीं है। देखिए कितने गुरु हैं संसार के अंदर, भारत में तो बाढ़ आई है गुरुओं, एक एक गुरु के एक एक करोड़ शिष्य मिल जाएंगे भारत के अंदर, और लाखों शिष्य तो पता नहीं कितने गुरु हैं जिनके लाखों शिष्य। लेकिन पूर्ण गुरु पर विश्वास का आना ये किसी भाग्य वाले का काम होता है, ये उन्हीं लोगों का आता है जो विचारशील प्राणी हैं, जिनकी संख्या संसार में बड़ी कम है, और जिनके अंदर ईश्वर की, जिन्होंने किसी भी प्रकार पूजा की है लेकिन निष्काम रूप में की, शांति के लिए की है, ईश्वर दर्शन के लिए की, तो उनके विश्वास, प्रभु ऐसी रचना रच देते हैं तो उनका विश्वास पूर्ण गुरु पर आ जाता है। जब पूर्ण गुरु पर विश्वास आ जाता है तभी वो उस गुरु की बात को पढ़ने की, जानने की, सुनने की कोशिश करता है दिल से, क्योंकि वो कहता है मेरा गुरु है। जब मेरा हो गया तब मेरे भले की कह रहा है तो मैं सुनूं तो सही, जानने की कोशिश तो करूंगा कह क्या रहा है ये, मेरे जीवन की, जीवन के कल्याण के लिए क्या कह रहा है। तो वो प्रेम से, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ गुरु की बात को पढ़ने की, सुनने की कोशिश करता है। फिर उसकी आंखें खुलती हैं कि गृहस्थ में कैसे रहना है, कमाई कैसे करनी है, लोगों से व्यवहार कैसे करना है, कैसे मैंने सोना है, कैसे ईश्वर की पूजा करनी है, कैसे मैंने जो है दान करना है, हर चीज गुरु सिखाता है। यदि पूर्ण गुरु है तो हर प्रकार का मार्गदर्शन वो करेगा। तो जब धीरे धीरे वो उसके अंदर जो गुरु भक्ति जागृत होती है, जब गुरु की बात को रात दिन पढ़ने की, जानने की कोशिश करता है और उसके अनुसार अमल करने की कोशिश करता है दिल से, तब वो उस गुरु ने जो उपासना सिखाई है, जो मंत्र सिखाया है, जिसकी परमिशन गुरु ने दी है, वो उस गुरु के ही अनुसार उस प्रभु की याद करने की कोशिश करता है। और वो बड़े प्रेम से याद करता है, क्योंकि अब उसका बाहर का जो बवंडर था वो तो खत्म हो गया, तो काम चलाने वाली बात है। सारी उसकी डिजायर, सारी उसकी इच्छा केवल अंदर जो प्रभु बैठे हैं उनसे भेंट करने की। उसकी समझ में तो बात आ गई, संसार में तो शांति हो ही नहीं सकती, ये संसार में तो काम बनेंगे भी बिगड़ेंगे, दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे, ये प्रारब्ध के चक्र में मैं पराधीन होकर, गुलाम होकर सारी जिंदगी ऐसे व्यतीत कर दूंगा, मुझे मिलेगा क्या? जब मेरे हाथ में ही नहीं है तो मुझे मिलेगा क्या? तो मैं भी औरों की तरह से मरकर चला जाऊंगा संसार। तो ये व्यक्ति जो है गुरु के बताए हुए अनुसार प्रभु की उपासना करता है, मौन होकर करता है, क्योंकि प्रभु अंदर है। ये पूर्ण गुरु ही आपको सिखाएगा कि प्रभु अंदर है, इसलिए प्रभु की उपासना भी मौन होकर अंदर ही किया। तो ये संसार में सादगी धारण करता है, अर्थात कम में गुजारा करने की कला सीखता है, कम में गुजारा करने की कोशिश करता है, पैसा भी ज्यादा कमाने की कोशिश नहीं करता, उसमें से वक्त को बचाने की कोशिश करता है, सोचता है मेरी गृहस्थी का गुजारा कितने में हो सकता है, उतना ही मैं क्यों ना कमाऊं। उसकी जो कोशिश होती है संसार को फैलाने की नहीं होती, संसार को सिकोड़ने की, क्योंकि उसको अपनी इस शरीर की कीमत का पता लग गया है। हम तो शरीर की कीमत समझते हैं पैसा ज्यादा कमाकर, नाम ज्यादा कमाकर, सुख ज्यादा भोगकर हम शरीर की कीमत समझते हैं, लेकिन जो जागरूक इंसान है, जिसके अंदर विवेक जागृत हो गया है, वो शरीर की कीमत ये नहीं समझता, वो शरीर की कीमत समझता है प्रभु से भेंट होने के लिए। ये मानव चोला जब मुझे मिला है कि प्रभु जब इसमें विराजमान है, सारी सृष्टि के मालिक है, मैं उनका पल्ला छोड़कर संसार का पल्ला पकड़े बैठा हूं, जो संसार ना मुझको मौत से बचा सकता है, ना मुझको बुढ़ापे से बचा सकता है, ना मुझको रोग से बचा सकता है, ना मुझको दुख से बचा सकता है। तो वो अंदर मौन होकर प्रभु की उपासना अंदर ही अंदर करता है। उसका एक ही उद्देश्य था कि प्रभु किसी प्रकार मेरा तुम्हारा मिलन। तो इस इच्छा के साथ जब वो चलता है, तब एक दिन उसके जीवन में आता है प्रभु सत्ता उसके अंदर जागृत हो जाती है। जागृत का मतलब प्रभु सत्ता तो वैसे ही जागृत है, वो प्रभु सत्ता सोई हुई नहीं है, मेरे वास्ते जागृत हो जाती है, अर्थात मेरे अनुभव में वो सत्ता आ जाती है। उस प्रभु के आनंद का, उस प्रभु की शक्ति का मैं इस शरीर में ही अनुभव करने लगता हूं, उसी प्रकार अनुभव करता हूं जिस प्रकार गुरु ने बताया, तब जाकर वास्तव में मुझको संतोष मिलता है। क्यों संतोष मिलता है? अब उसको पता लग गया कि संसार की सारी संपत्ति नष्ट हो सकती है, यहां तक कि मेरा शरीर भी नष्ट हो सकता है, लेकिन जो चीज मुझको अंदर मिल गई है ये इस शरीर की मौत के साथ भी खत्म नहीं होगी, ये मेरा प्रारब्ध बन गया। एक तो यह है कि अगला जन्म मुझको मनुष्य योनि में मिलेगा, और ये जो मेरी मेहनत है ये जो प्रभु का प्रेम है ये बचपन से ही अनपढ़ हालत में ही मेरे अंदर मौजूद होगा, संपत्ति आपके साथ नहीं जाएगी, ये यहीं छूट जाएगी, तुम्हारे सारे कर्म का फल तुम्हारे साथ जरूर जाएगा। तो इसीलिए वो कर्म करो जो इस जन्म में भी शांति दे और अगले जन्म में भी तुमको शांति दे। तो वो कर्म केवल एक ही है कि प्रभु परायण जीवन। इसीलिए गुरुदेव कहते थे कि इच्छाओं को बंधन जानने से कर्म की आसक्ति नाश होती है। इच्छाओं को बंधन जानने से कर्म की आसक्ति नाश होती है, तब सिमरन द्वारा मन शांत होता है और ईश्वर शक्ति का अनुभव होता है जो शांति रूप ही है। इसलिए गुरुदेव ने कहा वाणी में, समता अखंड शांति, कुल विघन दोष से न्याय, मंगत रूप नारायण का तत्व समता विचार। वो जो समता तत्व है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, वो हमारे रोम रोम में व्याप्त, उसी को सारे ऋषियों ने अंदर अनुभव किया, चाहे संसार में कोई भी अवतार हुआ, कोई भी सद्गुरु हुआ, तो उसका अनुभव जब इस जीव को अपने अंदर होता है उसी का नाम शांति। एक बार गुरुदेव के एक शिष्य से सोलापुर में मेरी भेंट हुई थी, दो दिन उनके पास रहने का सौभाग्य मिला। तो एक दिन पास बैठे हुए थे, वो बातचीत चल रही थी, बात चलते चलते वो, क्योंकि परम भक्त थे प्रभु के, वो गुरु की विशेष कृपा थी इनके ऊपर, प्रेमी देवराजी थे, वो कहने लगे, बोल बीच में अचानक बात करते थे, बोलते बोले चारों तरफ शांति ही शांति, शांति अखंड शांति, शांति के अलावा कुछ भी, कोई विचार कुछ उठ ही नहीं रहा। वो बात करते करते बयान कर रहे हैं, उनकी आंखों से, उनके हाव भाव से ये पता लग रहा है कि किस शांति के सागर में समय ये बैठे हुए। उसी वक्त उन्होंने ये दुआ दोहराया, समता अखंड शांति, कुल विघ्न दोष से न्याय। जिसको महाजी समता कह रहे ना, समता का मतलब है समतत्व, जो समान, जो तत्व समान रूप से सबके हृदय में विराजमान, सारी सृष्टि में विराजमान, उसी का नाम समता है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम ईश्वर है। तो वो सबके अंदर विद्यमान है, केवल मन की वासना के कारण हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। तो इसीलिए जब ये सारी बात धीरे धीरे समझ में आती है, तब मनुष्य गुरु की बात को जीवन में अपनाने की कोशिश करता है ईमानदारी से। ये ईमानदारी सुंदर तभी आती है जब उसके अंदर यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि संसार में मुझको परिणाम रूप में, सारे वर जीवन, सारा जीवन व्यतीत करने के बाद भी परिणाम रूप में मुझको बेचैनी के अलावा कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, यह उसका फाइनल निर्णय होता है। और इसी निर्णय के कारण संत लोग कहते हैं कि राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया जिस शोभा पाई कर। अंदर की शांति केवल उसको मिलती है जिसने ईश्वर की शोभा का अनुभव किया है, जिसने ईश्वर परायण जीवन व्यतीत किया है। इसीलिए संसार परायणता को छोड़कर, शरीर परायणता को छोड़कर पूर्ण गुरु का आसरा लेकर उसके वचनों के अनुसार, उसके मार्गदर्शन के अनुसार हमको संसारी जीवन व्यतीत करने की कोशिश करनी चाहिए, उसी के अनुसार अंदर प्रभु की उपासना करनी चाहिए, ताकि ये जन्म हमारी बेचैनी में ना बीते, शांति के साथ बीते, और अंत जब आए तभी शांति लेकर संसार से जुड़ा। ओम ब्रह्म सत्यम।